ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड इसलिए है क्योंकि गॉड आपके साथ है। गुड शब्द में भी गॉड समाहित है। तो अगर लाइफ में ऐसा लगे कुछ बुरा हो रहा है तो अपने आप ही जैसे गॉड याद आता है तो गुड होने लग जाता है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो दुख हरता सुख करता है। संसार में छोटा सा काम भी नहीं होता है तो इंसान भगवान को बुलाता है। तो ईश्वर में वो शक्ति है जो लाइफ में कंट्रास्ट ला सकती है। यानी अभी अभी जैसे सूर्य उदय होता है तो अभी अभी रात है तो अभी अभी दिन हो जाता है, वैसे ही जब शक्तियों का सूर्य, ज्ञान का सूर्य, प्यार का सूर्य, सुखों का सूर्य, शांति का सूर्य, भगवान हमारी जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यर्थ बातें होती हैं, वो सब दूर होने लगती हैं। परंतु बचपन से ये तो कहा गया कि वो परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम फादर है, परंतु परमात्मा के साथ का जो अनुभव है, उसकी शक्तियों का जो अनुभव है, उसके प्यार का जो अनुभव है, वो तो हमने किया ही नहीं। अब क्योंकि नहीं किया तो कोता ये है कि बोलते हैं मुंह से कि हाँ भगवान हमारे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल वो जो शक्ति आनी चाहिए, वो जो बिगड़ी को बन जाना चाहिए, वो बनता नहीं है। तो अभी कुछ दिनों से जो आप यहाँ पर शिविर कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, वो आपने सीख लिया होगा। सीखा है ना सभी ने, कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है। जैसे जिंदगी के अंदर खाना, सोना, उठना, बैठना पार्ट एंड पार्सल है, वैसे भगवान का साथ, उसका प्यार और उसको लेकर हर कार्य करना, ये भी जिंदगी का एक रूल बन जाना चाहिए। तो आज हम केवल शक्तियां लेनी है ये तो पता है, परंतु उन शक्तियों का फिर करना क्या है? क्योंकि एक होता है नॉलेज और एक होती है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एक होता है पावर लेना, फिर है एप्लीकेशन ऑफ पावर्स। क्योंकि जब तक किसी चीज को हमें यूज करना नहीं आता है, योग का प्रयोग करना नहीं आता है, जो एक्सपीरियंस किया है उसे लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता है और उसका फिर हमें बाहर से रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता है, तब तक मजे ही नहीं आते हैं, है ना। जैसे आपने स्कूल में, कॉलेज में जो एजुकेशन प्राप्त की, फिर उस एजुकेशन से कैसे हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, आप प्रैक्टिकल फील्ड में आप सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई यूज ही ना हो तो उस नॉलेज का हम करें भी क्या, तो उसको प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही भगवान से हम शक्तियां लेते हैं और जब सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक अनेक लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अनेक तरह की परिस्थितियां गो थ्रू करते हैं, कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, है ना, कोई आपको लेग पुलिंग करता है, कोई परेशान करता है, कोई टेंशन में लाने का प्रयास करता है, आप आते हो या नहीं आते, टेंशन जब आती है तो टेंशन ले लेते हो या नहीं लेते, तो ये पता चलता है कि आपने शक्तियां कितनी प्राप्त की हैं। जैसे हमारे जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो उस समय हमें करना क्या है, सिचुएशन के अंदर हमें करना क्या है, सह लेना है या सामना करना है, कुछ कभी सहना है कभी सामना करना है, लेकिन कब कहाँ क्या करना है उसके लिए भी निर्णय शक्ति पर रखने की शक्ति चाहिए। और अगर सहना है तो हम सह पा रहे हैं या नहीं सह पा रहे, और जब सामना करना है तो हम सामना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर पावर है तो कौन सी शक्ति कहाँ कब कैसे यूज करनी है वो मुझे आ जाती है, और अगर पावर नहीं है तो कंफ्यूजन आ जाती है और गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेने के कारण फिर पछतावा होता है। तो इसे तो पावर नहीं कहेंगे ना। तो पावर तब कही जाएगी जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज कर पाओ, और तब आपको लगेगा मैं एज ए विनर। लाइफ में तो स्ट्रगल्स आएंगे, पर आप उन स्ट्रगल्स के अंदर जीतते हो या हारते हो, जीतते हो या हारते हो किस पर आधारित है ये बात कि आप में शक्तियां हैं या नहीं है। अगर शक्तियां हैं तो जीतोगे, और अगर शक्ति नहीं है तो हार जाओगे। सिंपल है ना। जो पावरफुल है उसकी विजय होती है, और जो वीक है उसकी हार होती है। तो केवल बैटल फील्ड नहीं है लाइफ, लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर भी हमें हार और जीत का अनुभव होता है। कैसे? खुशी होती है तो जीत है, गम होता है तो हार है, मन अशांत होता है तो हार है, मन शांत रहता है तो जीत है। जो भी आत्मा के सातों गुण हैं अगर वो एनहांस हो रहे हैं तो जीत हो रही है, अगर वो डिप्लीट हो रहे हैं तो हार हो रही है। तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या रात तक आपकी कितनी बार हार हुई, कितनी बार जीत हुई, है ना, कितनी बार हार हुई कितनी बार जीत हुई, होती रहती है। कभी दुख कभी सुख, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी मूड ऑन कभी मूड ऑफ, कभी परेशान कभी स्टेबल। तो ये आधारित है इस बात पर कि कितनी आपने परमात्मा से शक्तियां ली हैं। ऐसे तो शक्तियां बहुत हैं, क्योंकि भगवान को कहते हैं सर्वशक्तिमान, है ना, हर पल उससे हमें शक्तियां मिल भी रही हैं। लेकिन आज हम मुख्य तौर पर 8 शक्तियों की बात करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो एक मिनट के लिए अनुभव करेंगे सबसे पहले हम कि हम परमात्मा से शक्तियां ले रहे हैं। बिकॉज शक्तियों को प्रयोग कैसे करना है उससे पहले योग लगाना बहुत जरूरी है। जस्ट फॉर अ मिनट, क्योंकि अब तक भी सुबह से लेकर, क्योंकि आपको जाना है तो जाना है जाना है, वो सब बुद्धि में चल रहा है ना, तो वो सारे संकल्प जो चल रहे हैं पास्ट के और फ्यूचर के, है ना, जाकर क्या करना है वो भी चल रहा होगा, जाना कैसे है वो भी चल रहा होगा, और भी कई बातें होती हैं लाइफ के अंदर हर एक के चल रही होती हैं। तो उन सब बातों को जो चल रहा है उसे लगाते हैं ब्रेक। और एट प्रेजेंट फिजिकली तो यहाँ पर आप उपस्थित हैं, पर मेंटली भी हम यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी एक पावर है कि अपने आप को हम जहाँ हैं जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर सकें, एकाग्रता। तो जस्ट फॉर अ मिनट मन को चारों ओर से जो कुछ जीवन में चल रहा है, जो हो चुका है या जो होने वाला है, जिंदगी के सब उतराव और चढ़ाव से मन को डिटैच करेंगे। सब कुछ बाहर है और जो बाहर है उसे बदलना ही है. पर मैं मस्तक के बीच चमकती हुई शक्ति, मैं सदा हूं. महसूस करें इस भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा लाइट स्टेबल हूं. बाहर कुछ भी हो अंदर ना जाए, एकदम डिटैच. मैं शक्ति हूं, मैं शांत हूं. ओम शांति. तो परमपिता परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं, या यूं कहे याद करते हैं, तो स्मृति भी एक शक्ति है. जैसे याद दिलाया गया, हनुमान को भी याद दिलाया गया ना, भूल गया था कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं. ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारी शक्ति है. इनफैक्ट हम ही उस परमात्मा शिव की शक्ति हैं, पर भूल जाते हैं. और जब भूल जाते हैं तो भूले करते हैं. जो गलतियां होती हैं लाइफ में, गलती से कर लिया, गलती से देख लिया, गलती से हो गया, गलती से सुन लिया, तो ये जो भूले होती हैं, उन सब भूलों का एक मुख्य कारण है कि हम खुद को भूल जाते हैं और जिसके हैं, और किसके हैं हम, किसके हैं, किसको बिलोंग करते हैं, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं. कौन हूं और किसका हूं, जब ये अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आधार कार्ड या आई कार्ड भूल गए तो कितनी प्रॉब्लम आती है ना. तो लाइफ में भी सारी प्रॉब्लम्स का एक मुख्य कारण क्या है, ये एक भूल, विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन और मेरा कौन. एक सेकेंड में अगर ये याद आ जाए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं. आत्मिक स्मृति आते ही आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां अंदर महसूस होने लगती हैं. और अगर आप में भी शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मैं कौन हूं पर मेरा कौन है, जब ये याद आता है, किसको बिलोंग करती हूं, कि वो मेरे साथ है, तो अगर आप में शक्ति नहीं भी है तो ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ आ जाती हैं. तो जैसे ये स्मृति आती है, ये याद आती है, तो फरियाद खत्म हो जाती है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है. वो करे, वो मिले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ खत्म. बस एक बारी याद आ जाए कि मैं किसकी हूं. ये स्मृति अपने आप ही शक्ति प्रदान करती है. तो हनुमान को भी याद दिलाया गया कि आपके अंदर वो शक्तियां हैं. तो जैसे हमें भी स्मृति आती है, तो ये स्मृति एक शक्ति का काम करती है. तो जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किसके साथ हूं मैं, किसके साथ है हम, हाँ, भगवान हमारा कौन है, साथी है. खुद ईश्वर हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है. तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो मुख्य तौर पर हमारी लाइफ के अंदर 8 शक्तियां आ जाती हैं. शक्तियां बहुत हैं, पर डे टू डे लाइफ में जो अक्सर हमें यूज होते हैं वो है मुख्य 8 शक्तियां हैं. और इन 8 शक्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी शक्ति की? हाँ, बहुत मुश्किल है ना, है ना, सहते ही नहीं है, सहन शक्ति है ही नहीं, छोटी सी बात होती है और मूड ऑन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है ना, थोड़ा सा स्टिमुलस मिलने की देर है, अभी अभी मूड ऑन है, बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ कह दिया और फिर देखो मन का क्या हाल होता है, जितनी खुशी है वो जैसे टायर में हवा भरी हुई थी, थोड़ा सा कुछ गया और फुस पंचर हो गया, अब गाड़ी नहीं चलेगी आगे, है ना। बिल्कुल, इतने ज्यादा छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इतने सेंसिटिव हो गए हैं हम लोग, थोड़ी सी बात भी सहन ही नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है, आजकल आप देखो न्यूज में भी जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, बड़े स्तर के लोगों से लेकर लो लेवल तक के लोग, कोई भी तरह के लोग हैं, कुछ नहीं है लाइफ में, छोटी छोटी बात आती है, एक छोटा सा सीन आता है जो आपको पसंद नहीं है, जो फेवरेबल नहीं है, और इंसान जान लेने की तैयारी कर लेता है और जान देने की भी तैयारी कर देता है ना, देख रहे हैं हम। और अगर तैयारी नहीं करता है तो कम से कम सोचने लग जाता है ना, प्लानिंग करने लग जाता है। अगर मरने और मारने की हिम्मत नहीं है, परंतु सोच में तो आ ही जाता है कि मर जाओ, ये कर दो, वो कर दो, कुछ ऐसा जो कि एक्चुअली ठीक नहीं है, और हम जानते हैं अंदर से कि ठीक नहीं है, परंतु वो करने का मन में विचार आ जाता है। क्यों? क्योंकि कौन सी शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। छोटे से बात होती है, जवाब देते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं। बच्चे जवाब देते हैं तो बड़ों को बहुत बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, क्यों मूड ऑन हो जाता है, क्यों मूड ऑफ हो जाता है उनकी छोटी छोटी बातों से, अच्छा कह दिया तो ऑन हो जाता है, बुरा कह दिया तो ऑफ हो जाता है ना। सबके हाथों में अपना स्विच देकर बैठे हैं हम, है ना, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग, अपने पराए, वो जैसे एक्ट करते हैं हम वैसे रिएक्ट करते हैं, चल रहा है ना ऐसा लाइफ में, क्यों? क्योंकि कौन सी शक्ति नहीं है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की मन की शक्ति वो स्ट्रांग होने लगती है। सहन शक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि मन कमजोर है, मन वीक है, इसीलिए मनोकायी रोग है, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब क्या है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। अगर कोई लोग सह रहे भी हैं, सहन कर भी रहे हैं बातों को, व्यक्तियों को, तो सहन करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ऐसा नहीं खुशी खुशी सहन कर रहे हैं, नहीं नहीं, मजबूरी है, क्या करें, और कोई चारा नहीं है, इसीलिए सहन कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, कि सहन कर कर करके एक दिन बम ब्लास्ट हो जाता है ना, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं होता सहन, और फिर जो कुछ भी पुराना था वो सब निकल आता है ना, क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी मेरे पास, पर जबरदस्ती जैसे दबा दी जाती है ना एनर्जी, फिर एक दिन ब्लास्ट। तो हम अपने आप को दबा कर चल रहे थे, पावर नहीं थी, सहन करना पड़ रहा था, इसलिए सहन कर रहे थे। तो अगर पावर होती तो खुशी खुशी, जैसे एक माँ होती है, वो बच्चा तंग करता है, कुछ करता है, सहन करती है, क्योंकि जानती है कि ये नादान है और मेरा बच्चा है। प्यार है, जहां प्यार है वहां सहना नहीं होता, वहां तो प्यार होता है ना, एहसास ही नहीं होता हम सहन कर रहे हैं। और फिर जहां इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जैसे दुनिया के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है ना, परंतु किस पर अटैक करते हैं, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हैं उसके पास भी है, अंदर जा रहे हैं परंतु असर नहीं हो रहा है क्योंकि शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। कोई पहलवान है उसको आप मुक्का मारो, असर होगा? उसको गुदगुदी होगी। और कोई वीक है उसको मुक्का मारो, वो गिर जाएगा। ऐसे ही होता है ना? जैसे कोई स्ट्रांग चीज पर आप मुक्का मारो तो आपको दर्द होगा, उसको नहीं कोई फर्क पड़ेगा, और किसी वीक पर मारो तो वो गिर जाएगा। ऐसे ही जो आत्माएं शक्तिशाली हैं वो बातों को सहन कर पाते हैं और खुशी खुशी, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे चीजें आई और चली गई। जैसे शास्त्रों में आपने महात्मा बुद्ध का मिसाल सुना होगा, उनको व्यक्ति बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, गालियां देता रहा देता रहा, परंतु ज्ञान, ज्ञान भी एक शक्ति है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वो व्यक्ति गाली देता जा रहा है पर महात्मा बुद्ध पर असर क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा तो क्या जवाब दिया कि तुमने दिया, मैंने नहीं लिया, तो गाली किसके पास रही? है ना? कैसे मुझे सहन करना है ज्ञान और योग, जब जितना जितना परमात्मा मेरे साथ है और परमात्मा का ज्ञान मेरे साथ है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये मुझे पता चल जाता है, उतना उतना ये सहन शक्ति बढ़ती जाती है। जितना जितना परमात्मा की याद बढ़ती जाती है, अंदर से आत्मा पावरफुल बनती जाती है, उतनी वीक बातों का असर, जितनी जितनी मैं पॉजिटिव बनती जाती हूँ, अंदर से ईश्वरीय शक्तियां आई, अंदर शांति एनहांस हो गई। शांति के सागर से कनेक्शन है, पर प्यार के सागर से कनेक्शन है, अंदर प्रेम बढ़ गया, अंदर शक्ति बढ़ गई, तो वीक बातों का असर, वीक परिस्थितियों का असर, नेगेटिविटी का असर आत्मा पर नहीं होने लगता, तो सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको पता ही नहीं चलता आप कई बातों को सहन करते जा रहे हो, वो कह रहे हैं आप पर असर ही नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है आप पर असर नहीं हो रहा है। क्यों असर नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर की सहन शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ चुकी है ना? यही करते हैं हम। परिस्थितियां ना आए ये नहीं होगा, लोग कुछ ना कहे ये नहीं होगा, वो तो आएंगी और बढ़ती जाएंगी। मुझे क्या करना है? अपने अंदर की इम्यूनिटी को, अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाना है। तो जितना जितना हम परमात्मा को याद करते जाते हैं, जितना जितना उसे शक्तियां लेते जाते हैं, तो आंतरिक मन की शक्ति हमारी एनहांस हो जाती है। और वो मन की शक्ति एनहांस होती है, मन पावरफुल होता है, तो दूसरे ने जो कुछ कहा और बाहर जो कुछ हुआ उसका असर अंदर पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंज आता है? सहन शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अभी चेक करते हैं आपकी लाइफ में सहन शक्ति बढ़ी है, है ना? कोई कुछ कहे? हाँ जी, हाँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के और शक्तियों की बात करेंगे, परंतु सहना कहाँ है और यहां सहना है या सामना करना है ये भी आना चाहिए। केवल एक शक्ति नहीं देते परमात्मा, सर्व शक्तियां देते हैं, और कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है उसकी परख करने की भी शक्ति देते हैं, कि परखना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट शक्ति है जो आगे चलकर हम बात करेंगे। तो जब हमें कहां कब कैसी शक्ति को प्रयोग करना है, योग का प्रयोग, यही तो है एप्लीकेशन। केवल नॉलेज जरूरी नहीं है, जैसे ग्रामर है आपको बचपन में सिखाई गई इंग्लिश में, पर कहां कॉमा लगाना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां क्वेश्चन मार्क लगाना है, नॉलेज तो दी गई। अब सहना भी एक शक्ति है, इसको प्रयोग करना है, पर कहां करना है वो भी तो एक पावर है। हर चीज को हर जगह नहीं यूज करना है, जैसे आपके रसोई में अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, कौन से बर्तन को कहाँ यूज करना है वो भी एक शक्ति है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर सब्जी को बनाने के लिए एक ही बर्तन यूज करना है, नहीं। ऐसे ही ईश्वर सर्वशक्तिवान है, हमें बहुत सारी शक्तियां दे रहे हैं, लेकिन कौन सी शक्ति को कहाँ कब यूज करना है ये भी पावर बहुत जरूरी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। जब हम अपने लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स में आते हैं, संबंधों में आते हैं, तो जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया नदी और सागर का। नदियाँ बहुत कुछ लेकर आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, अलग अलग स्थानों से आती हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, किचड़ा होता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, परंतु सागर क्या करता है, समा लेता है, रिजेक्ट नहीं करता है ना, समा लेता है, कुछ चीजें किनारे पर छोड़ देता है, कुछ अंदर भारी चीजें समा लेता है, रिजेक्ट नहीं करता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एकोमोडेट करते हैं या फिर नहीं चाहिए, ये ना होता तो अच्छा होता, ये चला जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, है ना। हमारी लाइफ में बहुत सारे संबंध हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कोई समझदार लोग हैं, कोई ना समझ लोग हैं, ऑफिस में भी हैं, घर में भी हैं, और रास्ते में भी मिल जाते हैं, है ना। पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, मजबूरी से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, या मजबूती से, है ना। कितनी पावर है, आजकल घर में दो लोग भी रह नहीं पाते हैं, क्यों, एक दूसरे की बातों को समा नहीं पाते हैं, क्योंकि देखते हैं लाइफ में सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग स्वभाव है, नेचर अलग है, लोग अलग हैं। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है, समुद्र की तरह, जो है जैसे हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, हर एक को रिजेक्ट करोगे, फिर अपनी मनोस्थिति देखो कैसी हो जाती है, हम भी रिजेक्टेड फील करते हैं, अकेलापन महसूस होता है, भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि ना हम उनको समा पा रहे हैं ना वो हमें समा पा रहे हैं, एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, परमात्मा के ज्ञान को समझते हैं, ईश्वर से योग लगाते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियां आती हैं। भगवान क्या कहते हैं, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो, जब मेरे हो, है ना, तो फिर मैं आपको स्वीकार करती हूं, मान लिया कि ये मेरे हैं। लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है तब तक एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, और ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये हमें बातों को, लोगों को समाने नहीं देती हैं, क्योंकि हमने रिलेशनशिप को रिलेशनशिप कम, बिजनेस ज्यादा बना दिया है, हर चीज में बिजनेस, मैंने इतना किया तो उसको भी इतना करना चाहिए, और अगर उसने नहीं किया तो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये जो लाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है, अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, समझना है ये बात, इस दुनिया में सब भगवान के बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। भगवान हमारी बुद्धि को विशाल बनाते हैं, जितना जितना हम ईश्वर से शक्तियां लेते हैं, कौन ले रहा है शक्ति, आत्मा ले रही है, और आत्मा एब्सॉर्ब कर रही है, और आत्मा में क्या है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। तो मन शक्तिशाली बनता है, बुद्धि शक्तिशाली बनती है। बुद्धि शक्तिशाली बनना यानी बुद्धि पावर भी आ गई, शुद्ध भी बन गई और विशाल भी बन गई, है ना। जब बुद्धि विशाल बन गई तो हम हर चीज को संकुचित दायरे से नहीं देखते हैं, वर्तमान समय आपके एक्शन से नहीं देखते हैं। बुद्धि विशाल हो गई है, ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। तो अब आप जो कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, उसको मैं केवल वर्तमान एंगल से नहीं देखती हूं, इंटेलेक्ट का प्रयोग करती हूं। क्यों कह रहा है वो ये, किस लिए कह रहा है, केवल बातों को नहीं देखती, बातों के पीछे छिपे हुए भाव को भी देखती हूं। अगर आप मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो तो मैं समझ जाती हूं आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है। मतलब क्रोध है, इसका मतलब क्या है? अब विशाल बुद्धि से देखो, संकुचित दायरे से देखती हूं तो ये बहुत क्रोधी है, मुझे इसके साथ बात नहीं करनी है। पर विशाल बुद्धि से देखती हूं, नॉलेज के आधार से देखो अब उसको, तो क्या समझती हूं, क्यों गुस्सा कर रहा है? मन में दुखी है, अशांत है। अब वो पेशेंट है। अब पेशेंट है, चिड़चिड़ा रहा है, तो समझ जाते हैं। अब आप सहन भी कर लोगे और उसकी बातों को समा भी लोगे, क्योंकि एंगल बदल गया ना, देखने का नजरिया। जैसे ही हम ईश्वरीय ज्ञान को समझने लगते हैं तो नॉलेज एक पावर का काम करती है, बुद्धि विशाल हो जाती है, है ना। वो दुखदाई बोल क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसमें सुख की कमी है। एंगल बदल गया देखने का। पहले हमें लगता है तनी सारा दिन ऐसे ही करता रहता है, अब वो बियर नहीं कर पा रहे, ना सहन कर पा रहे हैं, ना उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में अकोमोडेट कर पा रहे हैं, रिपल्शन क्रिएट हो रही है। परंतु जैसे जैसे ईश्वरीय शक्तियां आती जाती हैं, बुद्धि का विस्तार होता जाता है, ब्रॉड माइंडेड होते जाते हैं, तो उसकी बातें चीजों को समझते हैं। हम बातों के पीछे छिपे हुए भावों को समझते हैं। हम चीजों को मोटे तौर पे नहीं देखते हैं, स्थूलता नहीं देखते हैं, उसके पीछे छिपे हुए सूक्ष्म बातों को समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर से योग लगाने के लिए सबसे पहले कंडीशन है अपने को तो आत्मा समझो। जितना जितना सोल कॉन्शियस होते हैं, बॉडीली इफेक्ट्स, स्थूलता का प्रभाव, जो बातों का मोटापन है, वो कम होने लगता है। तो जितना जितना अपने को सोल कॉन्शियस हम समझने लगते हैं, सुप्रीम सोल से एनर्जी लेते हैं, उतनी बातों के पीछे छिपे हुए महीन भावों को समझते हैं। नहीं तो अभी तक क्या कर रहे थे? बस वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, न समा पा रहे थे, न सहन कर पा रहे थे। अब हम समा भी पाते हैं, सहन भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, ये दुखी है, है ना। समझ पाते हैं, है ना। अभी तक जैसे कोई व्यक्ति एक बारी चाय का कप लेकर जा रहा था, सामने वाला एक व्यक्ति आया, उसे टकरा गया, चाय गिर गई, तो किसी ने पूछा चाय क्यों गिरी, तो क्या जवाब दिया? हाँ, उसने टक्कर दी इसीलिए चाय गिर गई। अब ये है संकुचित दायरा, ऊपर से देखा हमने, क्योंकि टक्कर दी इसलिए गिर गया। पर ब्रॉड माइंडेड से देखें, क्योंकि कप में चाय थी तो चाय गिरी, पानी होता, कोल्ड ड्रिंक होती तो वो गिरती। सिंपल है ना। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जो मेरे अंदर है, उसे बाहर निकालने का माध्यम बनते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अंदर गुस्सा नहीं था, गुस्सा तो था, दुखी तो हम थे, वो सर्कमस्टांस माध्यम बने उस गुस्से को बाहर निकालने के। बाकी ऐसा नहीं है गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो टकराया, गुस्सा तो था, ऑलरेडी था अंदर, मन तो पहले से अशांत था। जिसका मन शांत है वो सिचुएशन वर्स्ट होते हुए भी शांति रहता है, परंतु जिसका मन पहले से अशांत है, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, लोग वो निमित्त बन जाते हैं उसे बाहर निकालने के। तो हम ये बात समझ जाते हैं कि जो उसके अंदर था वही निकला है, या जो मेरे अंदर है वही निकला है। अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाई हूं अब मैं। तो अब ये बातें तब समझ में आती है जो हम बातों को महीन रूप से समझते हैं। मोटे तौर पर तो ब्लेम गेम चलता रहता है ना। तो और क्या शक्ति मिलती है हमें? बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति, दुनिया में धोखे बहुत मिलते हैं, है ना। खुद भी खुद को धोखा देते हैं हम, कई बार देते हैं खुद को धोखा। जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो है कई बार छिपाने की कोशिश करते हैं। अक्सर करते हैं ना, अपनी अच्छाई को दिखाते हैं, थोड़ी भी होगी ना, है ना। कुछ पुण्य का काम किया तो दिखाते हैं, और जो पाप किए छुपाते हैं, है ना। खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरे भी हमें धोखा देते हैं। समझ ही नहीं आता है कितनी परतों के पीछे इंसान छिपा हुआ है। खुद भी हमने बहुत सारी परतें लगा रखी हैं अपने आप को या दूसरों को, है ना। सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, नहीं 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 मैं ठीक हूं, पता भी है अंदर से मैं गलत हूं, पर नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं। सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति वो भी अब ऐसे ही कर रहा है जब मैं कर रही हूं ना, वही वो कर रहा है। और कई बार उसके धोखे में आ जाते, अक्सर आ जाते हैं, है ना। धोखा क्यों मिलता है, क्या कारण है? क्योंकि हीरा और पत्थर केवल जौहरी ही है, उसको पता है कि ये हीरा है और ये पत्थर है। आम व्यक्ति को क्या पता? जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि हंस के समान हो जाती है ना। हंस और बगुला दोनों में अंतर होता है, एक ही जगह पर होते हैं, पर हंस को नीर और शीर में अंतर करना आता है ना। हीरा कौन है और पत्थर कौन है उसमें अंतर करना आता है, सही और गलत में अंतर करना आता है, परखना आता है। झूठ क्या है और सच क्या है वो परखना आता है। जितना जितना हम परमात्मा को याद करते हैं हमारी बुद्धि प्योर होती जाती है, इंटेलेक्ट। सारा असर बुद्धि पर पड़ता है, क्योंकि हम बुद्धि को ही एकाग्र करते हैं परमात्मा पर। बुद्धि और मन ये वो शक्तियां हैं जिस पर संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। जैसे जैसे हम किसी गलत बात, गलत चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उनके संग में आते हैं, मन और बुद्धि मलिन होने लगता है, उस पर परतें जमा होने लगती हैं, धोखा होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और जितना जितना हम परमात्मा जो परम पवित्र है, पवित्रता का सागर है, उसके कांटेक्ट में आते, इसलिए लोग कहते हैं सत्संग करो, जितना उसको याद करते जाते हैं बुद्धि प्यूरीफाई होने लगती है, ग्लोरीफाई होने लगती है, वाइट होने लगती है। जैसे जैसे आप वाइट होते हो अंदर से, बाहर की बात नहीं है, अंदर से परमात्मा की शक्तियां आई, वाइट होने लगे, जैसे सूर्य की किरणें पड़ी धरती पर, धरती उस पर अंधकार छटने लगा, उजियारा होने लगा। तो अंधेरे में आपको सही और गलत का पता नहीं चलता है, व्यक्ति कौन है कहाँ है पता नहीं चलता, भटकते हैं इंसान, अटकते हैं, है ना। क्यों अटके, क्यों भटके? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्धि थर्ड आई है, आत्मा की थर्ड आई है। तो जितना जितना बुद्धि महीन, पहले मलिन थी, अब महीन होती जा रही है, प्योर होती जा रही है। तो जैसे जैसे वाइट होते जाओ तो ब्लैक क्या है, ग्रे क्या है, यानी सही क्या है, गलत क्या है, कौन बनावटी बातें बोल रहा है और कौन असली है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जितने जितने आप प्योर होते जाते हो आपको पता चलने लग जाता है। अब तक क्या था, मैं खुद ही इम्प्योर थी, तो मुझे इम्प्योर और प्योर में अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे मैं खुद एक आवरण के साथ चल रही थी, एक बहुत अपने ऊपर बहुत सारे हम जैसे लेयर्स के साथ चल रहे थे, तो उसकी लेयर भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम प्योरीफाई होते जाते हैं, अंदर से वाइट होने लगते हैं, तो अगर वो ऑफ वाइट भी है तो पता चल जाता है ना, क्योंकि हम ही अंदर से मिक्सचर थे। तो परमात्मा की शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, जितना जितना हम उसे ग्रहण करते हैं, आत्मा अंदर से प्योर होती जाती है, पवित्र होती जाती है, बुद्धि प्योर होती जाती है, इंट्यूशन। हाँ जी, हाँ, तो निर्णय करने की शक्ति ये भी आता है, डील करने की भी पावर आ जाती है, अब क्या करना है ये भी आ जाती है बुद्धि। ये सारी तो पावर है, अब क्या करना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील करना होता है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा के संग में आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस सुबह से लेकर रात तक अलग अलग हैं, और हर एक की लाइफ के अंदर लोग भी अलग अलग हैं, तो कब कहां क्या करना है, ये सारी पावर्स आपको समझ में आने लगती हैं। इग्नोर कहां करना है, हमेशा कोई भी चीज यूज नहीं होती है। जैसे आप एक ही तरह का बर्तन सब जगह नहीं यूज करते ना, ऐसे ही ये सारी पावर्स आपको मिलती हैं, परंतु जितना जितना हम इन पावर्स को यूज करते हैं, इनकी एप्लीकेशन कब कहाँ करनी है वो भी पता चल जाती है। अब तक भी किसी के अंदर पावर्स होती है, पर कई बार हम पावर को गलत जगह यूज करते हैं, उसके कारण आपको सेटबैक्स मिलते हैं। पता चल रहा है, एक तो हमें परखने की शक्ति मिल गई, जितना जितना आपका माइंड प्योर होगा, बुद्धि प्योर हो गई, पता चल गया ये रॉन्ग है ये राइट है। परंतु उसके बाद जो होता है, डिसाइड करना है। और डिसाइड भी कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत महीन पावर है, ये भी बुद्धि की पावर है। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुद्धि डिसाइड करती है, बिल्कुल तराजू की तरह। तराजू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, परंतु ये डिसीजन राइट टाइम पर राइट हम तब लेते हैं जब राइटियस यानी परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है। अब क्या होता है, कनेक्शन क्यों नहीं लगता, क्योंकि लगाव, झुकाव, प्रभाव, स्वभाव और सबसे इंपॉर्टेंट अहंकार, मैं, ये बहुत सारी लेयर्स जब तक क्रॉस नहीं किए हैं, तब तक आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हम भगवान को याद करते हैं तो आपको सिखाते हैं अपने को आत्मा समझो, परंतु उससे पहले एक और बात कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, अब मुझे याद कर। याद तब तक टिकती नहीं है, एकाग्र होती नहीं है, जब तक डिटैचमेंट नहीं है। और ये डिटैचमेंट ही आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में मदद कर पाती है। जब तक आप अटैच हो, प्रभावित हो, चीजों का प्रभाव आपके मन चित्त पर है, तब तक आप राइट डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। अटैचमेंट है, जिसमें मैंने कहा लगाव, झुकाव, प्रभाव, स्वभाव, ये सब चीजें पराई हैं, बाहर से हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें जितना जितना, इसलिए अपने को आत्मा समझो। जब तक आप अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक नहीं पाते हो, मन एकाग्र हो नहीं पाता है, एकाग्रचित हो नहीं पाते हैं, तो राइट डिसीजन ले नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान जो निर्णय लेता है वो राइट होता है। और दूसरी बात, जैसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि केवल महीन नहीं बनती, अभी तो जैसे मैंने कहा ब्रॉड माइंडेड भी बन जाती है, दूरांदेशी भी बन जाती है, आप इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जो चीज होने वाली है वो भी आपको दिखाई देने लग जाती है। ये है पावर, यानी त्रिकालदर्शी भगवान को कहते हैं। आप भी त्रिकालदर्शी होकर डिसीजन लेने लगते हो, केवल वर्तमान को देखकर डिसीजन लेना ये बुद्धि की शॉर्ट साइटेडनेस है। लेकिन जब हम आदि, मध्य और अंत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो मैं कर रही हूं इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसने पहले क्या किया था, इसे कहते त्रिकालदर्शी हो जाती है बुद्धि, है ना। चीजों को तुरंत, अब इसके अंदर टाइम नहीं लेता है कि अगर पावर है तो आप चीजों को तुरंत समझ लेते हो कि हाँ ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करने से इसका ये इफेक्ट होगा, अगर मैंने बच्चे को अभी डांट दिया तो ये क्या क्या कर सकता है, अगर मैंने इस समय इसको ऐसे बोल दिया तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अगर मैं सह लेती हूं तो मुझे क्या बेनिफिट हो जाते हैं, अगर मैं समा लेती हूं तो फिर मुझे क्या बेनिफिट हो जाते हैं, अगर मैं नहीं समाती तो क्या क्या हो सकता है। ये चीजें जब आप परमात्मा को याद करते हो तो बुद्धि जब महीन बनती है, ब्रॉड माइंडेड बनती है, दिव्य बन जाती है, ज्ञान युक्त बन जाती है। तो जितना जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना, ये नहीं है कि हर जगह समाना है, हर जगह सहना है, हर जगह जब परख लिया तो व्यक्ति को तुरंत निकाल देना है, नहीं, कब लेना है, सही मौका कौन सा है, तरीका कौन सा है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इसे कहते हैं योग युक्त और युक्ति युक्त। परमात्मा को याद करने से केवल ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जब भी चाहे सहेंगे ही, जब चाहेंगे तो समाएंगे ही, नहीं, परंतु राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की एक ऐसी शक्ति मिल जाती है बुद्धि को, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, ये व्यक्ति अब और क्या कर सकता है, केवल अपने डिसीजन के लिए नहीं परंतु सामने वाले के लिए भी, इसकी क्षमताएं कितनी है, ये क्या कर सकता है और उसके लिए मुझे कैसे प्री प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीजें तब आती हैं जब आपकी बुद्धि में इतनी पावर आती है, और ये अपने आप आती हैं जब आप परमात्मा को याद करने लगते हो, अपने आप आते। इसलिए यहां पर इसके बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, ज्यूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे जजेस, बहुत सारे वकील अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे पहले जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो उन्हीं डिसीजंस को लेने में हमें दिक्कत आती थी, बिकॉज हम प्रभावित रहते हैं ना चीजों से, अच्छा ये भी सही है, फिर इसकी बात सुनते हैं तो ये भी ठीक लगता है, उसकी बात सुनते हैं तो वो भी ठीक लगता है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, किसकी बात सुननी है, कब क्या करना है, कौन सी चीज सबके लिए बेनिफिशियल है, स्वार्थ ही नहीं होते, निस्वार्थ भावना, कौन सी चीज मुझे भी फायदा करेगी, क्योंकि भगवान जो डिसीजन लेता है उसके कॉन्टेक्ट में हो आप, वो सबके लिए, उसे कहते हैं वर्ल्ड बेनिफैक्टर, सर्व का कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो जब आप परमात्मा के कॉन्टेक्ट में हो, उसकी शक्तियां आपकी बुद्धि में समाती हैं, तो आप वही डिसीजन लेते हो जो आपके लिए और सबके लिए कल्याणकारी है, किसी का लॉस भी ना हो, किसी को दुख भी ना हो, वही जो कहा काम भी हो जाए और आप बुरे भी ना बनो, वो शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं राइट डिसीजन मेकिंग पावर। ऐसा नहीं कि बस गलत है तो इसको साइड कर दो और सही है तो इसका फेवर कर लो, नहीं, उसको दुश्मन भी नहीं बनाना है आपको, है ना, किसी को दुश्मन भी, आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये राइट डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है जब आप मेडिटेशन करते हो, तो ये राजयोग आपको अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है ना, जैसे कहा सहना जरूरी है तो कई बारी पावर टू फेस जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है फेस करना कहाँ है, जब अपनों की बात आ जाती है ना, व्यक्तियों की बात आती है तो सहना बहुत अच्छा है, लेकिन जब सिचुएशन की बात आती है, जब सरकमस्टांसेस की बात आती है ना, जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो ये शक्ति काम आती है, कौन सी, सिचुएशंस का सामना करना है, और जब बात व्यक्तियों की हो, संबंधों की हो, तो सहने में आपका भला है, फायदा होगा, यही तो त्रिकालदर्शी बनी है कि कहां से मुझे फायदा होगा, फायदा यानी यहां हम बाह्य प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा पावर है, कहां मेरी पीस सुरक्षित है, शांति कहां है, सुख कहां है, ये प्रॉफिट है मेरा, आनंद कहां है, प्रेम कहां है, सुकून कहां है, क्या करने से मुझे फायदा होता है, है ना, अंदर क्या करने से, सामना करने से फायदा होता है या सहने से फायदा होता है, है ना। कई बारी हम गलत जगह पर गलत पावर यूज कर लेते हैं, तो इसको भी पावर नहीं कहेंगे, नहीं, यानी यथार्थ योग नहीं है। हम समझ जाते हैं योग सही नहीं लगे है। अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया, है ना, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन करो, अब समझो आपका, आप ट्रेन पर सफर कर रहे हो और सफर करते हुए मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, और ज्ञान है कि सब चीजें मेरे फायदे में होंगी, आपका स्टेशन चला गया और आप तो योगी कर रहे हो। ऐसा भी होता है, हम तो योग कर रहे थे, स्टेशन पार हो गया, नहीं, इसे शक्ति नहीं कहते। अगर आप सच में मेडिटेशन कर रहे हो तो परमात्मा की इंट्यूशन पावर आएगी, स्टेशन आ गया, चलो, नहीं। ये कई बारी हम गलत जगह पर गलत चीजों को यूज करते हैं और फिर अपने आप को सिद्ध करते हैं। यदि यथार्थ योग है, एग्जैक्टली आपका योग है, लगा रहे हो योग, तो आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाओगे, चीजों का, सिचुएशंस का, सर्कमस्टेंसेस का सामना कर पाओगे, है ना, तूफानों का सामना कर पाओगे। क्यों सामना कर पाओगे? नॉलेज है। क्या नॉलेज है? भगवान हमें ज्ञान देता है, पहली बात, आप अकेले नहीं हो। किसके साथ हो? भगवान हमारा, है ना, वो एक हमारा गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो जब भगवान जो बड़ा है, बड़े से बड़ा है, बिगड़ी को बनाने वाला है, वो आपके साथ है, तो फिर तूफान क्या चीज है? सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उससे बड़े हो सकते हैं। और दूसरी बात है ना, दूसरी बात, ये बात समझनी है, हर तूफान तोहफा लेकर आता है। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग, बहुत किस्मत वाले जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, है ना, उन्हीं का गुणगान होता है, उनकी बायोग्राफी बनती है, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम? यही तो पढ़ते हैं, भाई ये प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ में, इसने ऐसे डील की, यही चीज तो अप्रिशिएट करते हैं। और हम कहते हैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, है ना, तो फिर आप चाहते नहीं हो आपकी लाइफ में भी कोई आपको अप्रिशिएट करे, है ना। हाँ जी, डरते हैं ना, बाहर की स्थिति उतराव और चढ़ाव की है, ये बात समझनी है। जो कुछ भी ऊपर नीचे की घटनाएं घट रही है वो बाहर है। अब उन सिचुएशन में क्योंकि पावर नहीं है, आपकी आंतरिक स्थिति कमजोर है, तो बाहर का प्रभाव अंदर आ रहा है, वही इम्यूनिटी की बात है। बाहर की चीज आपके अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो। अगर आप अंदर से शक्तिशाली हो, एक रस हो, तो कोई भी चीज, प्रभाव क्या है? पराया भाव है। परिस्थिति क्या है? पराई स्थिति, आपकी नहीं है, बाहर है, है ना। तो बाहर की परिस्थिति, पराई स्थिति, पराया भाव स्वभाव पर हावी क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं अंदर से, स्व जो हूं मैं हूं, वो कमजोर हूं। जब अंदर से पावरफुल हो जाते हो तो बाहर ऊपर हो या नीचे हो, कुछ भी हो, निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, असर अंदर नहीं आता है। यही तो पावर है, और क्या पावर है? जितने जितने लोग जिनका हम गुणगान करते हैं, है ना, राम का गायन क्यों है, श्री राम जी का गायन क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में क्या कहते हैं, रावण आया, उसने ये असुर भेजे, फिर उसने ऐसे युद्ध किया, ऐसे उन चीजों को पार किया, यही तो हम सुनते हैं। विभिन्न परिस्थितियां उनकी लाइफ में आई और उन्होंने ऐसे पार किया, तो श्री राम जी का गायन भी रावण के कारण, हमारी लाइफ के अंदर भी जो विलन है जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं होने चाहिए, वो एक्चुअली में आपको आपके अंदर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आए हैं। बच्चा कहता है एग्जाम नहीं हो, अब एग्जाम नहीं पार करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये लाइफ के एग्जाम्स हैं, सिचुएशन है, ये एक्चुअली में ध्यान कहाँ देना है? तूफान पे नहीं, उसके बाद मिलने वाले तोहफे पर दो। समस्या पर नहीं, समाधान पर दो। हम क्या करते हैं, समस्या कॉन्शियस हो जाते हैं, परिस्थिति कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसको पावर देते हैं, इसीलिए सामना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं, समस्या आई फिर क्या करते हैं, हम उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, चीजों में परिस्थितियों में पावर नहीं है, किसी में भी पावर नहीं है। जब आप उसके अंदर कोई समस्या आई, कोई सर्कमस्टांस आए, उसके बारे में सोचने लगते हो तो अपने मन की पावर उसे देते हो, सोच रहे हो ना, फिर उसके बारे में समझने लगते हो, ये होगा क्या, क्यों, कहां, कैसे, बहुत कुछ चलने लगता है, तो फिर आप अपनी बुद्धि की पावर भी उसे देते हो, तो क्या होता है, समस्या बड़ी होती जाती है, कम नहीं होती है। जितना जितना सोचते जाओगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पावर भी उसे दे दी। अब जब हमें ये नॉलेज आ जाती है कि हमें क्या करना है, हाँ, हमारा फोकस समस्या पर नहीं, तूफान पे नहीं, तोहफे पर, इसके बाद क्या होने वाला है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, समझ के चलो जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो आपके अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आए, आपके सबसे बड़े टीचर हैं जो बताने आए हैं कि अभी भी आप में सहन शक्ति नहीं है, अभी भी आप सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे अपने अंदर की पावर को बढ़ानी है। एग्जाम्स बताते हैं आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, आपको इस पर काम करना है। तो हमारी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें ये रियलाइज कराने आती हैं, बताने आती हैं, हमें अनुभवी बनाने आती है। जब फेल भी हो गए तो क्या हुआ, पता तो चल गया ना, अनुभव तो बढ़ गया ना, और कुछ नहीं बढ़ा, एक्सपीरियंस तो बढ़ गया ना। जो व्यक्ति बार बार फेल होता है उसके बाद एग्जाम देता है, और जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है क्या, उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार ही कई लोग आईएएस आईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं कर पाते हैं, परंतु वो बहुत अच्छे ट्यूटर बन जाते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, वो एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी हो जाती है। इसलिए फेलियर कुछ नहीं होता है संसार में, ये एक मन की सोच है। तो चीजों का सामना करने की, उसको डील करने की शक्ति आ जाती है, कब? जब हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना, तो हर सिचुएशन का सामना करना आसान हो जाता है। कब, कहां, कैसे डील करना है वो भी आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, कौन सी शक्ति? सहयोग। दे पाते हैं, अपना ही पूरा हो जाए बहुत है, है ना, स्वार्थी हो गया इंसान ना, है ना, अपना खत्म हो तो दूसरे की भी मदद कर ले, है ना, जब तक अपनी मदद नहीं कर सक रहे हैं तो दूसरे की तो थॉट में भी नहीं आता है। लेग पुलिंग क्यों करता है इंसान? क्योंकि अपना ही नहीं कर पाता, सोचता दूसरे का भी, मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा हो जाता है ना। ये भाव क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से फुल नहीं है। भगवान को कहते हैं नॉलेज फुल, ब्लिसफुल, लव फुल, है ना, हर चीज में फुल है, पीसफुल, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, हर चीज का सागर है, अथाह है, खत्म ही नहीं होता है। इंसान के लिए फुल शब्द कभी यूज ही नहीं करते हैं। नॉलेजेबल है ना, उसको किसी न किसी चीज में थोड़ी महारत है, फुल नहीं है वो, कमी रहती ही है, और उस कमी को पूर्ण करने के लिए वो स्ट्रगल करता ही रहता है, ताउम्र करता रहता है, क्योंकि अंदर से फुल नहीं है ना। जो अंदर से फुल है, समझो मेरे पास कोई चीज बहुत सारी हो गई है, तो अपने आप ही मेरा मन करेगा कि भाई मैं दूसरे को दूं। भगवान के पास फुल है तो वो दाता है। शक्ति चाहिए भगवान से ले लो, प्यार चाहिए भगवान से ले लो, सुख चाहिए भगवान से ले लो। सब चीजों का, सब संबंधों का स्रोत है, भगवान से मिल जाएगा क्योंकि वो स्रोत है और वो दाता भी है। इसलिए अब हमारे पास जो चीज है ही नहीं तो हम देंगे कैसे? अब जब नहीं है तो क्या होता है? ये सोचते हैं कि दूसरे से कैसे मिल जाए। तो देवता तो छोड़ो, लेवता की इच्छा हो जाती कि मिल जाए बस कहीं से, तो सहयोग कैसे दोगे? तो जब हम योग लगाते हैं, सहयोग में योग समाहित है, सहयोग दे ही तब पाते हैं जब योग लगा हुआ होगा। जब स्रोत से मेरा योग होता है, परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं, केवल धन देना, स्थूल चीजें देना वो जरूरी नहीं है, परंतु आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक शक्तियां। इंसान मन से कमजोर है, इसीलिए तन की शक्तियां भी पूरी तरह वो लगा नहीं पाता है। आज इंसान को एक दूसरे के साथ जब वो आता है कॉन्टेक्ट में, तो उसे मानसिक शांति की जरूरत होती है, मनसा योगदान की जरूरत होती है। हम लोग भी जब मेडिटेशन करते हैं तो सारे विश्व के अंदर कोई लोग परेशान है, दुखी है, अशांत है, तो हम यही कहते हैं परमात्मा की लाइट, या हम अपनी शक्तियां अंदर से शांति की शक्ति उसको दें। तो जितना जितना हम योग लगाते हैं, शांति के सागर से योग लगाते हैं, मन में शांति बढ़ती है, समझ जाते हैं इसको भी शांति की जरूरत है, तो इसको भी थोड़ा मेडिटेशन सिखा देते हैं। अपने आप आता है, तब आता है जब अंदर से फुल होते हैं, और फुल तब होते हैं जब फुल के साथ मेरा कनेक्शन होता है। जब तक कनेक्शन नहीं है, उनके साथ कनेक्शन है जो खुद ही अपूर्ण है। अब तक यही कर रहे थे, है ना, वो प्यार करे, है ना, वो थोड़े से कुछ कर दे, वो चीज मिल जाए, ये चीज हो जाए, घर का ये काम हो जाए, फिर मैं ये करूं, ये डिपेंडेंसी चल रही थी, ये हो जाए तो मैं ये करूं। परंतु अब हम क्या समझ जाते हैं, भगवान जो स्रोत है उससे मुझे लेना है। अब ये नहीं है कि बच्चा प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं, है ना। अब तक क्या था, मम्मी सोचती है बच्चे प्यार से बात करे, बच्चे सोचते हैं मम्मी प्यार से बात करे, हस्बैंड सोचता है बीवी प्यार से बात करे, और वाइफ सोचती है हस्बैंड प्यार से बात करे तो मैं करूं। तो अब तक ये गिव एंड टेक चल रहा था। क्यों चल रहा था? सहयोग तो हम तब दें ना जब ये भी सहयोग दे। तो ये बिजनेस चल रहा था रिलेशनशिप में। दूसरे को सहयोग देने की भावना तब आती है जब आप अंदर से तृप्त हो, संतुष्ट हो, फुल हो। जो खुद अपूर्ण है वो दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन अब तक हम ये समझ नहीं पा रहे थे, एक्सपेक्टेशन फिर वही बढ़ जाते हैं हमारे। हम अपूर्ण से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे पूर्ण कर दे। तो ये सिचुएशन चल रही थी। सहयोग देने की भावना ऑटोमेटिकली आती। अब क्या होता है, जब हमारे अंदर फुल होता है तो हम रिलेशनशिप में भी ये नहीं सोचते कि इससे मिल जाए। हमारे मन में आता है कि हमारे अंदर शांति है, इसके अंदर नहीं है तो मैं दे दूं। ये भावना ही तब आती है। अब तक क्या था, ले लूं। अब तक है, अब क्या आता है, दे दूं। भगवान ने मुझे सुख दिया है, इसको भी सुखी बना दूं। भगवान ने मुझे इतना प्यार दिया है, इसको भी प्यार करें। ये भावना ही तब आती है जब आप अंदर से फुल हो। तो इसीलिए जितना जितना मेडिटेशन करते जाते हैं, आत्मा अंदर से फुल होती जाती है। और फिर सहयोग देना, ऐसा नहीं होता देना है, पर ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस ही सहयोग देती है। आपका होना ही सहयोग देने लग जाता है। अपने आप ही एनवायरमेंट को भी आप सहयोग देते हैं और व्यक्तियों को भी सहयोग देते हैं। अपने मुख से ही ऐसे बोल बोलते हैं जो सामने वाले को सुकून दे, उसको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। समझ जाते हो, परख जाते हो, निर्णय भी ऑटोमेटिकली होने लगता है। ऑटोमेटिकली ये आंतरिक मशीनरी काम करने लगती है। अब तक आपने सटल मशीनरी को ना जाम करके रखा था, अब ये ना केवल एक्टिवेट हो जाते हैं बल्कि पावरफुल भी हो जाती है। स्थूल शक्तियों को बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आप ज्यादा प्रयोग कर रहे थे, अब सूक्ष्म शक्तियां अंदर से एक्टिवेट हो गई, पावरफुल हो गई, अब इनके द्वारा काम करते हो।
तो स्थूल चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में समझ जाओ सूक्ष्म पावरफुल है, जो अंदर से फुल है उसको बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह अट्रैक्ट होते हुए आएंगी। जो अंदर से खाली है, होते हुए भी उसे चीजों की प्रेजेंस महसूस ही नहीं होगी, है पर फीलिंग ही नहीं आएगी, अंदर से खाली, असंतुष्ट, अतृप्त रहेगा। तो यही समझना है, हम अंदर से फुल हो जाते हैं फुल के साथ लगने से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कछुआ क्या करता है, जब चाहे बाहर कर्म इंद्रियों को फैला लेता है, और जब चाहे अंदर संकीर्ण हो जाता है, समेट लेता है, काम हो गया खत्म। हम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। काम होने से पहले दिमाग चल रहा है, करते हुए तो चल ही रहा है, और उसके बाद भी चलता जा रहा है। ये मानसिक शक्ति है, मन अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, चलता जाए ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये हो जाए तो क्या होगा, वो क्या, क्यों, कहां, कैसे, बहुत कुछ जब चल रहा है, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। और हो गया तो उसके बाद भी चल रहा है, उसने यही कहा था, उसने वो कहा था। मन जो है ऐसा नहीं है, कर्म योगी बनकर काम नहीं कर रहे हो, टोटल कर्म कॉन्शियस। सुबह उठते हैं, आज ये करना है, आज ये करना है, ये अभी वो काम करने का टाइम नहीं आया है, परंतु उसके चक्कर में जो आप इस समय काम कर रहे हो, है ना, चीजें रखकर भूल जाते हैं। क्यों? कर्म योगी बनना नहीं आता है, कर्म कॉन्शियस होकर काम कर रहे हो। चीजों को रखकर क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जिस समय हम वहां वो काम कर रहे हैं, उस समय हमारी बुद्धि कहीं और थी, और कोई कारण नहीं। लोग कहते मेमोरी लॉस हो गई है, कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं हुआ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, इंटेलेक्ट वहां नहीं है जहां आप हो, फिजिकली प्रेजेंट हो यहां और मेंटली प्रेजेंट हो वहां। और इसके लिए बहुत जरूरी है समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो अभी हम बात करेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये जो हम विस्तार कर लेते हैं, क्या, क्यों, कहां, कैसे, और कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, जितना जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उतना हम याद रहता है कौन करा रहा है। करण करावनहार परमात्मा है, मैं करणहार हूं और इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। फोकस परमात्मा याद करें, बाबा मेरे साथ आ जाओ, भगवान को कहे मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मिलकर ये काम करो। कोई भी काम करो, खाना बनाओ, घर का काम करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस पहुंच जाओ, क्या कहना है, मेरे साथ आ जाओ। अब वो जब साथ आ गया तो उसकी शक्तियां आपके साथ आ गई और आपको भी अब यहां प्रेजेंट, इसे कहते कर्म योगी। फिर डिटैचमेंट आ जाती है, जब मैं उससे कनेक्टेड हूं तो जो यहां काम कर रही हूं उसकी कॉन्शियसनेस में, काम यहां कर रही हूं पर कॉन्शियसनेस ऊपर है, तो अब क्या होगा, आपका हर काम एक्यूरेट होगा। अब उस चीज का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, अब आप आसानी से जब चाहे काम कर रहे हो, काम खत्म हो गया, माइंड खत्म, अब नेक्स्ट काम पर फोकस करना। अभी तक ये नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में बीवी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, अब वो प्रॉब्लम लेके अपने ऑफिस पहुंच गया, तो अब क्या होगा, कार्य क्षमता पर उसका इफेक्ट होगा, या फिर ऑफिस में कुछ ऐसे डिस्टरबेंस हो गए उसको लेकर घर पहुंच गए, सास ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, उसका असर ऑफिस पर पड़ रहा है, या फिर घर में भी होता है, पति के साथ झगड़ा हो गया, है ना, फिर उसी मूड के साथ सासू के पास चले गए, वहां भी झगड़ा हो गया। रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस को हम राइट टैकल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय पर क्या कर रहे होते हैं, हम उस चीज को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी को लेकर ट्रेवल करते हैं। तुरंत अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना और फिर इसके कहते हैं मास्क चेंज करना। हमें लाइफ के अंदर मास्क चेंज करना आना चाहिए। जब चाहे जो मास्क पहनना हो वो आना चाहिए। क्या होता है, एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, 5-10 मिनट और। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था वो नाटक कर रहा था। अब नाटक करते करते किसी ने कहा कि आपको रामलीला के अंदर 2 रोल अदा करने हैं। तो वो तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि डबल पगार मिलेगी ना। तो क्या रोल अदा करने, उसने कहा कि देखो आपको एक काम करना है, पहले आपको राम की सेना में जाना है और युद्ध करनी है रावण की सेना से, फिर रावण की सेना में जाना है, फिर वहां पर राम की सेना से युद्ध करनी है, बस इतना ही करना है, आपको डबल पगार मिल जाएगी। तो वो एक्टर बड़ा खुश हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो राम की सेना में गया, रावण की सेना के साथ युद्ध की, अब युद्ध करने के बाद वो रावण की सेना में चला गया। अब क्या हुआ, सारी रामलीला खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, सभी लोग पत्थर जूते सब मारने लगे। क्यों, हाँ यही तो बात है, यही समझना है। उसने राम की सेना में जा गया, पर रावण की सेना में जब गया तो मास्क नहीं बदला, वानर का मास्क पहनकर ही उनके दैत्य की कंपनी में चला गया। तो क्या हो गया, रामलीला। हमारी लाइफ में भी यही होता है, हम क्या करते हैं, ऑफिस का मास्क लगा के घर आ जाते हैं, घर का मास्क लगा के ऑफिस चले जाते हैं। विस्तार को संकीर्ण करना नहीं आता, फैलाना तो आता है पर समेटना नहीं आता है, संकीर्ण करना नहीं आता है। तो जितना जितना मेडिटेट करते हैं उतना माइंड पर, बुद्धि पर, ये मन और बुद्धि की बात है, फैलाव मन और बुद्धि का होता है, उतना उसको संकीर्ण करना आ जाता है। और लास्ट शक्ति क्या है, समेटने की शक्ति, एवर रेडी। इसकी आज की दुनिया में बहुत जरूरत है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाता है, हम तैयार नहीं होते, माइंड तैयार नहीं होता। तो क्या होता है, शॉक लगते हैं, गलत डिसीजन होते हैं, ना अपना कुछ कर पाते हैं ना अपनों का कुछ कर पाते हैं। हम चाहते हैं सबका अच्छा कर दें लेकिन रेडी नहीं है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम एवर रेडी रह पाते हैं, हर बार हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए हम एवर रेडी हो पाते हैं। और उसके लिए हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे पावर ऑफ डिटैचमेंट सीखते हैं। अगर आप डिटैच रहते हो तो समेट पाते हो, इजीली समेट पाते हो। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम मेडिटेशन में सिखाते हैं, अंदर जाने की और बाहर आने की प्रैक्टिस। एक छोटी सी कहानी के साथ, क्योंकि टाइम हो गया है आपका, मैं इसको विराम दूंगी। छोटी सी आपको बहुत सुंदर एक कहानी सुनाती हूँ, मज़ेदार है। एक बार एक बहुत अच्छा मॉन्क था, बहुत सिद्धि वाला था, बहुत अच्छा उसने नॉलेज और पावर ले रखी थी। उसका एक डिसाइपल था, जापान की बात है। तो वो जो डिसाइपल मॉन्क को कहता है कि आप एक दिन हमारे घर पधारे, तो वो मॉन्क कहता है कि ज़रूर पधारेंगे। तो एक दिन वो टाइम आता है, मॉन्क उसके घर पर जाते हैं और उसके घर पर जाकर सत्संग जैसे हम करते हैं वैसे अच्छा अच्छा ज्ञान के पॉइंट सुनाने लगते हैं। अब उसका घर जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की 7th फ्लोर पर था। 7th फ्लोर पर भाषण चल रहा है, सभी लोग तन्लीनता से बैठे हुए हैं ज्ञान में ध्यान में। अचानक से अर्थक्वेक हो गया। अब अर्थक्वेक हो गया तो क्या होगा, बैठेंगे बैठेंगे, सब भागे, 7th से 6th, 5th, 4th, 3rd फ्लोर पर भागे। वो जो डिसाइपल था वो भी भागा। 4th मंजिल पर जब वो पहुंचा तो उसके आगे एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। तो उसने देखा कि अब रास्ता तो ब्लॉक हो गया, मैं नीचे तो जा नहीं सकता। तुरंत उसके माइंड में आया कि मॉन्क को तो मैंने भागते हुए देखा ही नहीं, अब नीचे तो जा नहीं सकता था, ऊपर गया। फटाफट भागा, देखा मॉन्क तो अपने ध्यान में मगन है। उसका मन किया उसे उठाऊं और कहूं भागो भाई, जिंदगी रहेगी तो और तपस्या ध्यान कर लेंगे। जैसे ही हाथ लगाने गया, उसमें हिम्मत ही नहीं हुई उसे हाथ लगाए। थोड़ी देर के बाद अर्थक्वेक शांत हो गया और मॉन्क ने आंखें खोली और जहां से उसने वो ज्ञान देना शुरू किया था वहीं से स्टार्ट करने लगा। तो डिसाइपल ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, आप जो ज्ञान सुना रहे थे वो तो सब वॉश आउट हो गया, इतनी तेज अर्थक्वेक आया, सब लोग भाग गए और जो आप कह रहे थे वो भी सब गायब। अभी आप बस एक बात बताओ कि आप भागे क्यों नहीं, बाकी सब छोड़ दो। तो मॉन्क ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उसने कहा, मैं भागा जैसे तुम भागे वैसे मैं भी भागा, बस अंतर ये था तुम बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागा। तुम बाहर एक स्थान ढूंढ रहे थे जहां पर कोई हलचल ना हो, और मैं भी अंदर वो स्थान ढूंढ रहा था जहां बाहर की हलचल का कोई असर ना हो। पर पता है आपको, मैं एक सेकंड में पहुंच गया। मॉन्क ने कहा, मैं एक सेकंड में पहुंच गया, यही वंडरफुल बात थी। तो उसने कहा, ऐसे कैसे हो गया इतनी हलचल में? तो उसने कहा, पता है क्यों? क्योंकि मैं रोज अंदर जाने की और बाहर आने की प्रैक्टिस करता हूं, अभ्यास है ना, अभ्यास प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको अचानक से, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करी है, लॉन्चिंग हुई ना, ट्रेनिंग कर ली है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, हम सीखे हुए होते हैं, बच्चे भी बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के टाइम पर भूल जाते हैं। जब जरूरत होती है ना उस ज्ञान की, तब काम नहीं आता है, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हमारे मन पर, चित्त पर हावी हो जाती है कि वो चीज आती हुई भी नहीं आती है। क्यों? चीजें तो सीख ली पर माइंड को, बुद्धि को, इसको ट्रेन करना नहीं सीखा। अंदर जाने का और बाहर आने का अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल फील्ड में भी जब उन शक्तियों की जरूरत होती है तो कई बार हम नहीं यूज कर पाते। इसलिए जहां जिस चीज को यूज करना है वो भी तब आ पाता है जब इन चीजों की प्रैक्टिस की है, नहीं तो नहीं आती है। तो हमें क्या करना है? अब इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए अष्ट शक्तियां जो दिखाई हैं उसका एक स्वरूप शिव की शक्ति हम हैं, तो अष्ट शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति बन जाते हैं। तो आज हमने कैसे हमें ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करनी है वो तो सीखा हमने पहले, लेकिन इन शक्तियों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है और कैसे यूजफुल हो सकती हैं अगर हम इनका अभ्यास करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो चीजें सीखी। अभी दो मिनट के लिए छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, जस्ट फॉर टू मिनट्स। मन को बिल्कुल रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। परिस्थितियां, व्यक्ति, सर्कमस्टांस सब बाहर है, मैं रिलैक्स। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट ले, सोचने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, पर ये पल मेरा है, मेरे लिए है।
महसूस करें मस्तक के बीच मैं शक्ति हूं। एक पावर, एक एनर्जी, एक लाइट। दुनिया में कर्म करते, बातों के प्रभाव में आते, बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी बहुत सी शक्तियां क्षीण करी है, पर अब हर बिगड़ी को बनाने का समय है, हर विघ्न को विनाश करने का समय है, हर असंभव को संभव करने का समय है। महसूस करें बिल्कुल मेरे सामने सर्वशक्तियों का सूर्य, और उनसे निकलती शक्तिशाली किरण है। ये किरण है, ये शक्तियां मेरे अंतर की हर कमी कमजोरी को खत्म कर रही है। महसूस करें मेरे भीतर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति समाते जाए। सहयोग देने की शक्ति, सामना करने की शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति परमात्म सर्वशक्तियां समाती जा रही है। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, संभाले अंदर तक मैं स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मेरे भीतर ईश्वरीय सर्वशक्तियां है, अब कोई भी कर्म कठिन नहीं, अब कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं, अब कोई भी मंजिल दूर नहीं। खुद भगवान मेरा साथी है, हर कदम पर, हर कर्म में, हर निर्णय में उसका साथ और हाथ हर पल है।